नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि ये ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन कर सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाना है। इसमें देश में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। साथ ही तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को संशोधित करना है ताकि इन उत्पादों पर करों की दर को मौजूदा स्तर पर रखा जा सके। विधेयक के अंतर्गत कच्चे तंबाकू, बने हुए तंबाकू से बने उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ये कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि ये उपकर नहीं है बल्कि ये एक उत्पाद शुल्क है जो GST लागू होने से पहले लगा करता था।
When GST was introduced in 2017,
2017 में जब GST लागू हुआ तो केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अपने उत्पाद शुल्क के अधिकार छोड़ दिए और इसे GST परिषद को दे दिया ताकि परिषद क्षतिपूर्ति उपकर लगा सके। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर वसूला जाने वाला क्षतिपूर्ति उपकर GST में आने के बाद से शुरुआती वर्षों में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को दिया गया।
For the initial years, when they come into the GST,
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सरकार चिंतित है और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के कई कदम उठा रही है। राज्यसभा में मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें की गई जिसके बाद दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने में कमी आई। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से पराली जलाए जाने में 90% की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि वन के प्रमुख क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत ने बहुत काम किया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया। जॉर्जिया की संसद के अध्यक्ष शाल पापुआशविली के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने बताया कि दोनों पक्षों ने जॉर्जिया में नए भारतीय दूतावास के उद्घाटन और बेहतर प्रत्यक्ष संपर्क की संभावनाओं का स्वागत किया। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। इस अभियान में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद एक संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 29वें ओवर में 2 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।